यह लक्षर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया कृष्ण बलराम मंदिर जयपुर में दीक्षा समारोह के ऊपर। हरे कृष्ण। दिनांक 30/4/2014।
गुरु के आदेश का पालन नहीं करना, गुरु को धारण करके समझना। गुरु कौन है? वो एक पोस्टमैन है जो कि आपको भगवान का संदेश देता है। और गुरु की इच्छा क्या है कि हर भक्त हर शिष्य भगवान की शरणागत हो, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े, भगवान की सेवा का भावना बढ़े। और गुरु में कुछ गुरु होने चाहिए। हाँ, भगवत स्वामी कहते हैं, वाचो बेगम मनीष क्रोध बेगम जीव बेगम
हजारो पस्त बेगम।
गुरु को मन बुद्धि इंद्रियों पर पूरा मन
डायबिटीज भी थी। डायबिटीज में तो मीठा नहीं खा सकते, तो माँ ने कई बार बोला बेटे को मीठा खाना बंद करो मर जाओगे। बेटे ने मीठा खाना नहीं छोड़ा, तो माँ ने कहा चलो गुरुजी के पास ले जाते हो। तो गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरे बेटे को बहुत ऊंची डायबिटीज है, वो मीठा खाना छोड़ता ही नहीं, क्या करूँ? गुरुजी ने कहा दो हफ्ते बाद आना। दो हफ्ते बाद जब आए, गुरु ने उनके बेटे से कहा, बेटा मीठा मत खाना, तुम्हें ऊंची डायबिटीज है। और गुरु बेटे ने कहा ओके डैडी, ओके गुरुजी, नहीं करेंगे। तो माँ ने कहा ये तो गुरुजी में बड़ा चमत्कार है। गुरु ने बोला, बेटे ने एकदम स्वीकार कर लिया। तो माँ ने बेटे से गुरुजी से पूछा, जैसे हमने आज बोला दो हफ्ते पहले क्यों नहीं बोल दिया था? तो गुरुजी ने कहा दो हफ्ते पहले मैं भी मीठा खा रहा था, तो मैं उसको कैसे बोलता मीठा नहीं खाओ। तो गुरु को खुद स्वयं नियमों का पालन करना पड़ता है, फिर वो दूसरों को ये उपदेश दे सकता है। तो गुरु की इच्छा है कि भगवान का संदेश यथारूप हम स्वीकार करें। और इस संसार में श्रील प्रभुपाद का खास स्थान है। प्रभुपाद जी इस कौन संसार के संस्थापक आचार्य हैं, और जो भी उपदेश गुरु दे वो निर्भर रहता है 100% प्रभुपाद जी की शिक्षा के ऊपर। प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य हैं, और प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य के रूप में 10,000 साल तक प्रचार करते जाएंगे। शिष्य को सोचना चाहिए, मैं मूर्ख हूँ, मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। जब चैतन्य महाप्रभु ने, जब प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आप इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हो, आप हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र क्यों नहीं पढ़ते, क्या पागलों जैसे दास्ते हो गाते हो? और महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरु ने देखा और कहा तुम केवल हरिनाम के योग्य हो, तुम्हारे पास ज़्यादा बुद्धि नहीं है। बड़ी विनम्रता से चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु की सेवा भी की। चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी ईश्वरपुरी इतने खुश थे कि उन्होंने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया, जिसके द्वारा सारे विश्व में उन्होंने प्रचार किया। तो गुरु का शिष्य का कर्तव्य बनता है कि वो गुरु के आदेश का पालन करे। चौथा, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो वैदिक शास्त्रों का संदेश है ये इसमें कोई कमी है। वैदिक शास्त्रों का जो संदेश है ये भगवान की वाणी सनातन शिक्षा, इसमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई दोष नहीं। आज भी भगवद गीता का वही प्रभाव है जो कि हजारों साल पहले था। तो हमें
किसी हालत में ये नहीं समझना चाहिए कि जो वैदिक शास्त्रों का संदेश है वो आधुनिक युग में लागू नहीं। हमारे कई भारतीय प्रचारक ये सोचते थे, क्या ये प्राचीन वैदिक संस्कृति, इसका कोई स्थान नहीं। जब अंग्रेजों का राज्य था, हिंदुओं के चरित्र को कमजोर बनाने के लिए अंग्रेजों ने बड़े बड़े स्कॉलर भेजे इंग्लैंड से। पहले आकर उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और फिर वैदिक ग्रंथों का अनुवाद किया। और अनुवाद किया किस लिए? ये स्थापित करने के लिए ये जो वैदिक शिक्षा है ये कल्पना है, वास्तविक में है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये कल्पना है, हमें ये सोचना चाहिए ये बिल्कुल प्रमाणिक है, ये परम भगवान द्वारा आ रही है, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं। पांचवा नाम अपराध है, अपना भावर देना हरि नाम को, या ये सोचना कि हरि नाम की जो महिमा है यह कल्पना है। शास्त्र में कहा गया है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो न सेवा न सेवा न सेवा एवं गति अन्यथा। हरि के नाम हरि के नाम हरि के नाम यही एक साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। ये सोचना कि हरि नाम में इतनी शक्ति नहीं है, हम बाहर से तो हरि नाम करेंगे और चोरी चोरी हम दूसरे मंत्र भी करेंगे, ये महान अपराध है। हमें ये विश्वास रहना चाहिए कि हरि नाम में ही पूरी शक्ति है। कली कले नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान अवतारित हुए हैं हरि नाम के माध्यम पर, और हरि नाम लेने से ही हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो अगर हमारा आपके पास ज़्यादा समय है तो दूसरे मंत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं, या हरे कृष्ण मंत्र को ही ज़्यादा करो। या प्रभुपाद जी ने संस्था की स्थापना की, उन्होंने शिष्यों को कहा था 64 माला दिन में करने के लिए, तो वो 64 नहीं कर पाए तो प्रभुपाद ने कहा 32, 32 नहीं कर पाए तो प्रभुपाद ने कहा 16, और बिल्कुल कम नहीं। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 16 माला से ज़्यादा कर सकते हो, किसी हालत में कम नहीं कर सकते। सातवां नाम अपराध है हरे कृष्ण मंत्र के जप के बल पर पाप करना। ये सोचना कि मेरी दीक्षा हो गई है, प्रभु नाम ले के आओ, मेरी दीक्षा हो गई है, मेरी दीक्षा हुई श्री कृष्ण बलराम के समक्ष, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं कुछ पाप भी करूँगा तो भगवान मेरी सुरक्षा करेंगे, ये महापाप है। ये सोचना कि हरे कृष्ण मंत्र के जाप के बल पर पाप करना, ये सोचना रोज 16 माला करता हूँ तो अगर मैं कुछ गलती भी करूँगा अपराध भी करूँगा तो भगवान को माफ़ करना ही पड़ेगा। भक्त जो है किसी प्रकार से भगवान पर बोझा नहीं बनना चाहता। कल रात कहाँ माधवेंद्रपुरी की कथा सुना रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जब माधवेंद्रपुरी को पता लगा कि वो ग्वाला स्वयं भगवान थे तो वो शर्मिंदा हो गए। तो हरि प्रभुपाद जी हर दीक्षा समारोह में कहते थे सब नाम अपराधों में ये सबसे भयंकर अपराध है, क्या? हरे कृष्ण मंत्र के जाप के बल पर पाप करना। ये सोचना कि मैं 16 माला का जाप करता हूँ, अगर मैं अपराध करूँगा भी तो माफ हो जाएगा, प्रभु नाम लेके आओ, मैं 5 मिनट में तैयार हूँ। तो हमें इसी प्रकार से हरि नाम के जाप के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। एक समय प्रभुपाद जी एक भक्त को यूरोप में दीक्षा दे रहे थे, और प्रभुपाद जी ने कहा नाउ नो मोर सिनिंग, अब और कोई पाप नहीं। तो हमें बड़े सावधानी से चलना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप है ये किसी प्रकार से कर्मकंड कार्य है। कर्मकंड कार्य एक प्रकार का व्यापार होता है। हम भगवान से कहते हैं हम ये चढ़ाएंगे, ये दान देंगे, ये सेवा करेंगे, उसके बदले में हमें ये सुख प्राप्त होना चाहिए। हम भगवान से व्यापार नहीं करते, आप सब जुड़े हो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर, तो इसलिए हमारी कर्मकांड में रुचि नहीं। हमारी किस में रुचि है? शुद्ध भक्ति में। और चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांत। जो कृष्ण भक्त हैं खास करके निष्काम भाव से जुड़ते हैं वो सदा शांत रहते हैं। तो अगर आप भक्ति में जुड़े रहोगे तो सदा शांत रहोगे। और कर्मकांड में हमारी कोई रुचि नहीं, कर्मकांड कार्य का बिल्कुल वर्णन नहीं है श्रीमद् भागवतम में। नौवां नाम अपराध है, और श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। आप सबसे कहते हो हरे कृष्णा जब आप सड़क में मिलते हो, पर हरि नाम की जो गहरी महिमा है वो उपदेश हम दे सकते हैं जबकि किसी में थोड़ी श्रद्धा हो। जैसे कि अगर आप किसी को मिलते हो रास्ते में, वो नाम पूछता है, आप नाम बता दोगे पर ये नहीं बताओगे घर का पता क्या है, घर का फोन क्या है, ये बताओगे। जब दूसरे व्यक्ति की श्रद्धा, जब आपकी श्रद्धा उसमें बढ़ जाओ, तो उसी प्रकार हरिनाम की महिमा का प्रचार जो भक्त हैं उन्हें करना, और जिनकी रुचि नहीं है उन्हें महिमा का गहरा अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं। और दसवां नाम अपराध है कि अनेक प्रयास के कारण भी भौतिक इच्छाओं को बनाए रखना। भौतिक इच्छाएं जो हैं हमारे शत्रु हैं, और शास्त्रों में स्पष्ट स्थापित किया गया है क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो कीमत भी भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को जरूर स्वीकार करो। तो जो चीजें जो अनर्था हमारे शत्रु हैं वो हमें तुरंत ही त्याग देना चाहिए। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आपको संतुष्टता नहीं प्राप्त होगी, असली संतुष्टता प्राप्त होगी तब आप ध्यान से सेवा करो। ये जो दसवां नाम अपराध है इसके दो भाव हैं। दूसरा भाव ये है कि हमें ध्यान से जाप करना चाहिए। जो आपका 16 माला का जाप है इसको निभाने के लिए 1.5 से 2 घंटे की आवश्यकता है। तो जब आप जाप करने बैठते हो कृपा करके और कुछ कार्य मत करो, केवल जाप करो, ये 1.5-2 घंटे कृष्ण के साथ रहो। और ये नहीं कि हम जाप कर रहे हैं और 10 अलग अलग विषयों की चर्चा भी कर रहे हैं, पर आप देखोगे जितने ध्यान से आप जाप करोगे उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल निकलेगी। तो हमें केवल जाप ही नहीं करना पर ध्यानपूर्वक जाप करना है, और ध्यानपूर्वक जाप से आप भगवान को भी आकर्षित कर सकते हो। तो इसको संस्था में जैसे मैंने कहा था, दीक्षा केवल जब दी जाती है तो 1.5-2 और अधिक सालों के लिए भक्तों ने भगवान की सेवा और माला का जाप किया है। साथ में हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बड़ा परिश्रम करके इन लिस्ट लगाना बड़ा लिस्ट उल्लेख से नाम लिया। प्रभुपाद जी ने बड़े परिश्रम करके इन ग्रंथों का अनुवाद किया। प्रभुपाद जी ने लगभग 100 ग्रंथों का अनुवाद किया। तो हम भक्तों को इन ग्रंथों को पढ़ना भी चाहिए। ग्रंथों में है भगवान की वाणी, जब भगवान की वाणी पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि क्या तेज होगी। साथ में हम लोग जो साधना वैदिक भक्ति का पालन करते हैं, वैदिक भक्ति का अर्थ है नियमों का पालन।
जैसे कि जो मंदिर में रहते हैं उनके लिए एक मंदिर का शेड्यूल रहता है, पर जो आप लोग के घरों में रहते हो आपको भी शेड्यूल बनाना चाहिए, मंगल आरती, क्लास, गुरु पूजा, ये सब चीज़ों के नियम का पालन रोज करना चाहिए। अगर हम भक्तों की संग में नहीं रहेंगे तो क्या भक्ति कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो आज दीक्षा ले रहे हो, आप बड़े शुभ स्थान में ले रहे हो, इस्कॉन का जयपुर का धाम श्री श्री कृष्ण बलराम के समक्ष, तो आप सबका प्रयास रहना चाहिए कि आप अच्छे भक्त बनो। अगर आप चार नियमों का पालन करोगे और अच्छी साधना रखोगे तो बिना शंका के भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। हम भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है माला का जाप। कई बार भक्त मेरे से पूछते हैं क्या सेवा करूं महाराज, मैं कहता हूँ पहले माला का जाप और ध्यान से करो। माला का जाप अच्छी तरह करोगे तो सारे अनर्थ पिघल जाएंगे और आप भक्ति में उत्साह के साथ रह सकोगे। आज के इस कार्यक्रम में कई भक्त ब्राह्मण दीक्षा भी ले रहे हैं, तो ब्राह्मण दीक्षा जैसे मैंने कहा जब दी जाती है तब कम से कम हरिनाम दीक्षा को 2-3 साल हो गए हैं, और जिसने भक्ति शास्त्री का कोर्स किया हो या जिसने ये स्थापित किया है कि उसके पास भी आध्यात्मिक ज्ञान है। और इस्कॉन संस्था का मूल उद्देश्य क्या है, पूरे समाज को सुखी बनाना, पर उन्हें पता है कि असली सुख चाहिए भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो ब्राह्मण दीक्षा दी जा रही है दो भक्तों को, और ब्राह्मण दीक्षा के विषय में भगवद गीता में भगवान ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हैं, समोधमो तपो शोषम शांतिर अर्जम एवच ज्ञानम। ब्राह्मण उसे कहते हैं इसमें ये गुण हो, उसे बड़ा सहनशील होना चाहिए, उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, उसमें दया की भावना होनी चाहिए, उसके बाद ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद वैराग्य होना चाहिए। जिस व्यक्ति में ये गुण है उन्हें हम सोच सकते हैं वो ब्राह्मण। ये नहीं कि हम कहें हम ब्राह्मण हैं और हर प्रकार का गलत काम करें। प्रभुपाद जी कहते थे हमें शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, तो ब्राह्मण की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। और ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर से दूर हो जाओ, इसका मतलब है हम मंदिर से और निकट से जुड़ो सेवा करने के लिए। तो ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन है कहाँ, श्रीमद् भगवद गीता में, शमोदम तपो सोचम शांति राजम ए वचा ज्ञानम ज्ञानम अस्ते के हम ब्रह्म कर्म स्वयं। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को अत्यंत सहनशील होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय में कहा अगर आप सदा हरि नाम का जाप करना चाहते हो तो हमें क्या होना है, सहनशील होना है। और ब्राह्मण के पास आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए हम सबको। प्रभुपाद जी ने बड़े परिश्रम से इन ग्रंथों का अनुवाद किया, और प्रभुपाद जी की इच्छा क्या थी कि हम सब पढ़ें, खास करके जो ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को प्रचार की सेवा में भी जुड़ना चाहिए और उनमें त्याग की भावना होना चाहिए। तो जिनमें ये गुण हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उन्हें हम ब्राह्मण बुला सकते हैं। तो आप जो आज ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हो, आपसे निवेदन है कि आप एग्जाम्पलरी ब्राह्मण बनना, ये नहीं नाम के ब्राह्मण। भक्ति सिद्धांत जी पहले महान आचार्य थे जिन्होंने समाज में ये स्थापित किया कि ब्राह्मण व्यक्ति बनता है गुणों पर आधारित, जन्म पर आधारित नहीं। एक समय एक सब ब्राह्मणों की सभा में भक्ति सिद्धांत जी भक्तिनाथ ठाकुर को निमंत्रण दिया था आने के लिए, भक्ति विनोद ठाकुर का स्वास ठीक नहीं था, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी को भेजा। ब्राह्मणों की सभा हो रही थी, भक्ति सिद्धांत जी ने अपना प्रवचन आरंभ किया ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए, जिसके द्वारा ब्राह्मण बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने आगे कहा श्लोकों के आधार पर कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है किसके आधार पर, गुणों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। उन्होंने ये स्थापित किया कि असली ब्राह्मण जो है वो भगवान की शिक्षा का पूरा पालन करता है, ब्राह्मणों का आचरण बिल्कुल शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं हमने दो पैसे का जेरू पहन दिया तो हाँ बड़े ऊंचे कोटि के ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों को ठाकुर सेवा में भी जुड़ना चाहिए। तो आप सब से निवेदन है कि वैदिक भक्ति का पालन करना नियमों का। प्रभुपाद जी ने हमें ग्रंथ, अनेक ग्रंथ दिए हैं, इन्हें पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने लगभग हर प्रश्न का उत्तर दिया है, इनको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। और अगर हम ध्यान से जाप करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो क्या परिणाम होगा, क्या लाभ होगा, क्या अनर्था सारे पिघल जाएंगे, और फिर आप बड़ी सरलता से भगवान की सेवा कर सकोगे। तो आप सबसे निवेदन है, आप अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से उठाना। कई धार्मिक संस्थाएं हैं जहां आपको एक मिनट में दीक्षा मिल जाती है, अभी जाओगे और दो दिन दो मिनट में ब्राह्मण दीक्षा भी मिल जाती है। पर इस संस्था में हरि दीक्षा, हरि नाम दीक्षा के लिए 2-3 साल राह देखना पड़ता है, ब्राह्मण दीक्षा के लिए समय देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभुपाद जी चाहते थे हम सब मजबूत भक्त बने, और अगर मजबूत भक्त बनोगे तो फिर विचलित नहीं होगे। तो ब्राह्मण का ये भी कर्तव्य बनता है कि भगवान का प्रचार बढ़ाए। तो आप सब तैयार हो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए? हल्का बोला आपने, हाँ ना, क्या है आपकी जिम्मेदारी? अगर आपको लगता है कि आप नहीं निभा सकोगे जिम्मेदारी, चार नियम का पालन नहीं कर सकोगे, तो फिर अभी भी बैठ सकते हो। और भगवान क्या कहते हैं, जो प्रयास करते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए, अगर उनमें कुछ कमी भी हो तो उसे मैं दूर कर देता हूँ। तब हम भक्तों के नाम को पुकारेंगे और उन्हें बीज देंगे, और दीक्षा के समय, क्योंकि ये आपका दूसरा जन्म है, आपको एक नाम दिया जाएगा, वो नाम के आगे दास और दासी जोड़ा जाएगा। दास का अर्थ है सेवक, दासी का भी अर्थ है सेवक। अभी आप वापस जा सकते हो। बोले